आज है 8 जून दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव की यात्रा पर।
तो बहुत जरूरी है कि मालदीव्स और ये जो क्षेत्र है इंडियन ओशन का, यहाँ पीस स्टेबिलिटी रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो रोल इंडिया प्ले करता है यहाँ, एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर का।
महेंद्र सिंह धोनी को मनपसंद ग्लव्स पहनने के लिए आईसीसी से नहीं मिली इजाजत।
आईसीसी ने अगर आपको बोला है कि लोगों हटाए, उनके पास भी लीगल एडवाइजर्स हैं, उनकी भी क्रिकेट ऑपरेशंस की कमेटी है, इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनाड़ी लोग हैं।
अलीगढ़ के टप्पल में 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना और सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना है। मालदीव को प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा के लिए चुने जाने के पीछे चीन भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वो अगले साल से पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने की इजाज़त देगी। हर साल 12 निजी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जा पाएंगे। निजी कंपनियां स्पेसएक्स और बोइंग पर्यटकों को स्पेस स्टेशन ले जाने का इंतजाम करेंगी और इसके लिए वो पर्यटकों से आने जाने का करीब $6 करोड़ किराया वसूलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के उपनिदेशक रॉबिन गेटिंस ने बताया, अगर एक निजी अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे लाइफ सपोर्ट, खाने और पानी जैसी चीजों के लिए कीमत चुकानी होगी। हमारे खुद के अंतरिक्ष यात्री जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाते हैं तो उस पर $8 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत ये खर्चा घटकर $6 करोड़ हो जाएगा। तो किसी निजी अंतरिक्ष यात्री को करीब इतना ही खर्चा देना होगा। इसके लिए 2 कंपनियों को नियुक्त किया गया है, स्पेसएक्स और बोइंग। तो उन्हें उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। लाने ले जाने के लिए कंपनियां उनसे पैसा लेंगी, लेकिन जब वो स्टेशन पर आएंगे तो उसका भी खर्चा उन्हें देना होगा। मोटे तौर पर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रात का खर्चा $35,000 होगा। ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के उपनिदेशक रॉबिन गेटिंस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने मेक्सिको के सामानों पर सोमवार से आयात शुल्क लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मसले पर वॉशिंगटन में बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेक्सिको अमेरिकी सीमा की ओर बढ़ रहे प्रवासियों को रोकने के लिए कोशिशें तेज करे। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्ट शॉर्ट ने कहा कि मामले में प्रगति तो हुई है, लेकिन अब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका है। उन्होंने कहा, सबसे पहली और अहम बात यह है कि राष्ट्रपति हमारी दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। हमें लगा था कि मैक्सिको बातचीत के टेबल पर किसी हल के साथ आएगा, लेकिन बुधवार को हमें लगा कि संतोषजनक बातचीत नहीं हुई। उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो है, लेकिन वो काफी नहीं है। ये थे अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्ट शॉर्ट के शब्द। अमेरिका के रक्षा विभाग ने रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहे तुर्की पर दबाव बढ़ा दिया है। विभाग ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर वो रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तो अमेरिका फाइटर जेट डील को रोक देगा। तुर्की ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील की हुई है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो तुर्की के पायलटों की ट्रेनिंग भी रोक देगा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद सूडान का राजनीतिक संकट सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूडान में सैन्य शासकों और प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बात करने के बाद एबी ने सत्ता जल्द से जल्द नागरिक प्रशासन को सौंपे जाने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ मध्यस्थ स्वीकार कर लेंगे। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश विफल रही थी। OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप ने रूस में एक खोजी पत्रकार की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में आज पहली विदेश यात्रा पर मालदीव रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ दो परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे। वो मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे। मालदीव से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट सुनिए।
राजधानी माले में इन दिनों हलचल थोड़ी ज्यादा है। सड़कों की सफाई और इमारतों को चमकाने की मुहिम जारी है। पिछले 8 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा जो है। शहर के बीचों बीच एक मशहूर होटल के बाहर मुलाकात हुई अमित कुमार मंडल से, जो कोलकाता से यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं।
एक्चुअली इलेक्शन तो हो गया नया, अभी दूसरे इलेक्शन आने के बाद मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन बहुत अच्छा है। उस हिसाब से मिस्टर नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा है हम लोगों के लिए अच्छा भी है। प्लस इंडियन भी यहाँ पे बहुत है, पहले हम लोग ऐसे स्कोप नहीं थे, तो उस हिसाब से ठीक है, पहले से बेटर है।
पिछले सालों में मालदीव भारत संबंधों में मिठास कम खटास ज़्यादा रही थी। वजह थी पिछले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की चीन से नज़दीकियाँ। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ और पीएम मोदी ने नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण में आकर एक कूटनीतिक संदेश दे डाला। इधर 2019 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेकेंड इनिंग्स में बिम्स्टेक के नेताओं को बुलाया, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार जैसे मुल्क शामिल हैं, लेकिन मालदीव नहीं। जाहिर है भारतीय विदेश मंत्रालय के दिमाग में ये बात रही होगी कि कहीं मालदीव को ये खटक न जाए, क्योंकि मालदीव की दक्षिण एशिया और अरब सागर में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भारत के लिए अब बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है। इस यात्रा में पीएम मोदी मालदीव की मजलिस को संबोधित करने के अलावा आर्थिक सहयोग और चरमपंथ की चुनौती पर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मालदीव में भारतीय दूतावास में इसी पर काम होता लग रहा है। संजय सुधीर इन दिनों मालदीव में भारतीय राजदूत हैं और उन्होंने बताया,
हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक बहुत बड़ा अंग है मालदीव्स। तो जितना हमारा ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअली 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरता है। तो बहुत ज़रूरी है कि मालदीव्स और ये जो क्षेत्र है इंडियन ओशन का, यहाँ पीस स्टेबिलिटी रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो रोल इंडिया प्ले करता है यहाँ, एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर का।
मालदीव में भारतीय मूल के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। करीब 1000 द्वीपों वाले इस देश में भारत से आकर काम करने वालों की भी कमी नहीं। पेशे से एसी मैकेनिक खुशबू अली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मूल निवासी हैं। 1 दशक पहले दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बसे और पिछले कुछ सालों से मालदीव की राजधानी माले में नौकरी करते हैं। खुशबू अली ने बताया,
हाँ यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इंडियंस ने बहुत हेल्प की है मालदीव की, पहले से ऑलरेडी कर रहा है अभी भी, ये सब कुछ बोलते हैं अभी। लेकिन 12 घंटे का ड्यूटी है यहाँ पे, अच्छा नहीं है, थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा सैलरी भी कम है इंडियन आर्मी का, टेक्नीशियन का जो लेबर में आता है उसका भी थोड़ा कम है, अच्छा होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आने के बाद श्रीलंका भी जाएंगे। जाहिर है मालदीव ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की निगाह इस यात्रा पर बारीकी से बनी रहेगी। नितिन श्रीवास्तव, BBC, माले, मालदीव।
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल में 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। अलीगढ़ से बाहर भी ये घटना चर्चा का विषय बन रही है, जहां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। अलीगढ़ से BBC संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट सुनिए।
ये मामला 30 मई की सुबह से शुरू होता है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, परिवार वालों का कहना है कि खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बच्ची वहां से गायब है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, दिन भर ढूंढा, अगले दिन भी ढूंढा, फिर 2-3 दिन ढूंढते रहे। 2 जून की सुबह को 7 बजे एक स्थानीय महिला है जो कूड़ा उठाने का काम करती है, घर घर से कूड़ा बिनती है और उसको एक बाहर डिपॉजिट करती है। उन्होंने बताया कि उन्हें बच्ची का शव मिला एक कूड़े के ढेर में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या देखा।
मैंने हेल कचरे की रखी है ऊपर और कुत्ता बाहर कुला रहे हैं दुकान में से, ये देखा मैंने। वाते बाद में मैंने शोर मचा दिया।
बच्ची का जो शव था इस हालत में था कि जो लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे और वहां पर गए बिल्कुल शव पहचानने की स्थिति में नहीं था। हमें जो उनके परिवार ने बताया कि बच्ची ने पीले कलर के कपड़े पहन रखे थे, उससे पहचाना जा सका, नहीं तो उसको पहचानना भी मुश्किल था। आइए सुनते हैं उनकी माँ का क्या कहना था।
बच्ची यहाँ से खेलने के लिए निकली थी और बाहर गेट से गायब हो गई थी। बच्चे सास का जो घर है उसी गेट से गायब हो गई। हम पूरी छानबीन की थी हमने, टप्पल में सारी जगह पर हमने घूमा था, उसे देखी हुई घर भी पूछा भी था। मुसलमान के हर घर में गई थी पर उन्होंने नुके नहीं है, यहाँ पर नहीं आई है। और मास्क भी लगवाई थी, मतलब आवाज़ भी लगवाई थी मस्जिद में और वैसे भी गली गली में और पास के जितने भी गांव में सारे में आवाज लगवाई।
ये बच्ची 2.5 साल की थी, शादी के 5 साल के बाद पैदा हुई थी, बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। जो बुआ है उन्होंने बताया कि कितनी नटखट थी,
बहुत अच्छी छोटे छोटे पैरों से चलती थी, बहुत सुंदर लगती थी, बहुत शैतान भी थी, बहुत शैतानी करती थी साथ साथ सारे परिवार के, इकली ही बेटी थी।
पुलिस ने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जाहिद और असलम नाम उनका बताया जा रहा है। हम दोनों के घर पे गए लेकिन दोनों के घर खाली थे, जैसे लग रहा था कि लोग डर के मारे वहां से भाग गए हैं। और वहां पर हमें जो बताया गया कि जाहिद, दोनों शादीशुदा लोग हैं, जाहिद की उम्र करीब 28-29 साल बताई जा रही है और असलम की उम्र जो है करीब 40 साल बताई जा रही है। पुलिस से हमारी जो बात हुई है तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि मामला जो है पैसे के लेन देन का है। दरअसल बच्ची के दादा ने कुछ पैसे उधार दिए थे जाहिद को, कुछ पैसे वापस लौटाए गए लेकिन कुछ पैसे वापस नहीं लौटाए गए, उसको लेकर कुछ तूतू मैमें हुई थी, बहस हुई थी, उसके बाद ये बच्ची लापता है। तो पुलिस शक जता रही है कि शायद उसी कारण ये घटना हुई है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम मामले की जाँच कर रहे हैं और पुलिस इस मामले में NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी में है। उसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है उसे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, इसके लिए पुलिस डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही है।
अलीगढ़ के टप्पल से जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता विनीत खरे। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट विश्व कप के दौरान विकेट के पीछे अपने मनपसंद ग्लव्स अब नहीं पहन पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने रेजिमेंटल डैगर वाले धोनी के ग्लव्स को नियमों का उल्लंघन बताया है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने धोनी का समर्थन किया है। BBC संवाददाता नवीन नेगी ने क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली से संपर्क किया और जानना चाहा ये पूरा मामला आखिर है क्या।
देखिए, उनका जो एक क्लॉज है क्या आप ड्रेस पहनेंगे उस पे क्या मैसेज जाएगा, वो एक ICC का अपना क्लॉज है जो इंडियन टीम मैनेजमेंट के पास भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम ये क्लॉज क्या है, जिस क्लॉज के अंदर उनको कहा जा रहा है कि आप ये लोगो नहीं लगा सकते हैं। और वो ये है कि आपको मैन्युफैक्चरर के 2 लोगो आप लगा सकते हैं, बाकी जो ICC के कलेक्टेड लोगो हैं शर्ट पे लगे हुए आते हैं। इसमें विवाद तो बनाया जा रहा है, विवाद तो कुछ है नहीं। अगर एक टूर्नामेंट का रूल है आपके पास, सामने रूल पड़ा है, अगर आप रूल नहीं मानना चाहते हैं तो अलग बात है, फिर तो विवाद होगा ही होगा।
तो मतलब हम ये माने कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो नियम है उसका तो उल्लंघन किया है उन्होंने।
जी हाँ, क्योंकि ICC ने अगर आपको बोला है कि आप उसको हटाएं, लोगो हटाएं, तो ICC ने कुछ सोच के समझ के ही, उनके पास भी लीगल एडवाइजर्स हैं, उनकी भी क्रिकेट ऑपरेशंस की कमेटी है, इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, उनको मालूम तो होगा ना। ऐसा नहीं है कि वो अनाड़ी लोग।
इससे पहले भी एक मैच हुआ था अभी कुछ दिनों पहले जिसमें पूरी इंडियन टीम ने आर्मी की कैप पहनी थी, उस वक्त भी क्या कोई नियम का उल्लंघन हुआ था?
उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि आपने कैप पहनी है, कैप के ऊपर लोगो, अगर आपको ध्यान हो BCCI, ठीक है ना, और सबने एक ही टाइप की टोपी पहनी थी, कैमोफ्लाज रंग है, आर्मी से जुड़ा है, उसका मतलब ये नहीं कि आर्मी की ही टोपी है। अगर आर्मी लिखा होगा तो मैं उल्लंघन कर रहा हूँ कि मैं आर्मी की टोपी मैं सिविलियन क्यों पहन रहा हूँ, लेकिन उससे मिलता जुलता कैमोफ्लाज किया हुआ अगर कैप है, BCCI ने उस मैच में वो टोपी पहनने के लिए ICC से परमिशन ली थी। उनको मालूम था कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उन्होंने परमिशन ले ली और ICC ने परमिशन दी भी उनको, वो कैप पहन के खेले।
अच्छा, अगर एक पल के लिए मान लें कि BCCI के दबाव में आकर के अगर ICC इसको अलाउड कर देता है कि आप लगा सकते हैं आने वाले मैचेस में, इसका क्या कुछ बुरे परिणाम हमको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ और इस तरीके के नतीजे और सामने आ सकते हैं?
देखिए, फिर बहुत जो है आप एक तरीके से
आप एक संकेत दे रहे हैं दूसरी टीमों को भी, आप कल रोक पाएंगे क्या? आप एक कल आप अलाउ कर दीजिए धोनी को, वो ग्लव पे मार्क लगा के आ जाते हैं, इंसिग्निया लगा के आ जाते हैं, और परसों कोई वेस्टइंडीज का खिलाड़ी लगा के आता है, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कोई अपना लगा के आता है, फिर आप क्या करेंगे? आप कैसे रोकेंगे? कितनी टीमों को रोकेंगे आप?
ये थे क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी। बाकी खेल समाचार कुछ ही देर के बाद। आइए पहले एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर। गुरप्रीत सैनी तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी, अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्चे की मौत का जो मामला सामने आया है उससे जुड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस में दिख रही है। खबर के मुताबिक 5 साल पहले अभियुक्त पर लगा था अपनी ही बेटी के रेप का आरोप, जिसके बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, ये जानकारी पुलिस ने दी है। और एक तस्वीर भी इंडियन एक्सप्रेस में दिख रही है जिसमें कई लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। द हिंदू अखबार के मुताबिक मामले की जांच के लिए पुलिस ने 6 सदस्यीय SIT का गठन कर दिया है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि 31 मई को परिजनों की शिकायत के बावजूद संदिग्ध के खिलाफ तुरंत कार्रवाई ना करने को लेकर टप्पल के SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर दिख रही है कि RBI ने NPA के नियमों में ढील दी है। NPA टैग के लिए 1 दिन से 1 महीने का वक्त दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज में की पहचान करने के लिए शुक्रवार को नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत बैंकों को कर्ज अदायगी में पहली चूक के 30 दिन के अंदर उस खाते को संकटग्रस्त खाते के रूप में उल्लेख करना जरूरी होगा। वहीं एक और खबर दिख रही है, कई अखबारों में है ये भी हिंदी और अंग्रेजी के, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और स्थिरता बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादों को हल करने की बात कही है। और ये तीसरी उनसे प्रधानमंत्री मोदी को 23 मई के बाद उन्होंने दूसरी बार संपर्क किया है। और वही हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर दिख रही है कि विदेशी करार दिए गए पूर्व सैनिक को जमानत। पिछले महीने असम में ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए और हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
गुरप्रीत सैनी बता रही थी दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है।
BBC इंडिया बोल।
लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में खाता तक नहीं खोल पाई कांग्रेस, कोई कमाल नहीं दिखा पाया राहुल गांधी का नेतृत्व, और अब बिखरने लगा है कांग्रेस का कुनबा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब नेहरू गांधी परिवार से हटकर होगा कांग्रेस का भविष्य। BBC इंडिया बोल में इस बार इसी विषय पर होगी चर्चा। अपनी राय रखने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब बात एक तानाशाह की, जिसने मात्र 27 साल की उम्र में सैन्य विद्रोह करके सत्ता संभाली और उसके बाद 42 साल तक एक छत्र राज किया। उनकी गिनती अपने समय के सबसे सनकी, क्रूर और तुनक मिजाज तानाशाहों में होती थी। हम बात कर रहे हैं लीबिया के कर्नल गद्दाफी की। कर्नल गद्दाफी की 77वीं जयंती पर उनके जीवन के दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
وانا راهو معمر قذافي قائد اممي انا دافع عني الملايين انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء وسنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنگا زنگا
هم اور ہمارے ساتھی لیبیا کے برے لوگوں اور گندگی کو انچ انچ گھر گھر گلی گلی جا کر صاف کریں گے।
यूं तो लीबिया के तानाशाह कर्नल मुआमिर गद्दाफी का पतन बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन 22 फरवरी 2011 को पूरे देश में टेलीवाइज गद्दाफी के इस भाषण ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अरबी में उनके द्वारा कहा गया शब्द जेंगा जेंगा यानी गली गली उनके खिलाफ विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बन गया। ये एक तरह की धमकी थी, लेकिन लीबिया वासियों ने इसे एक तरह के मजाक में बदल दिया। कोई भी अगर धीरे से भी जेंगा जेंगा कहता तो लीबियावासी जोर का ठहाका लगाते, दौड़कर उसका हाथ मिलाते, जोर से ताली बजाते और उसकी पीठ थपथपाते। कर्नल गद्दाफी ने लीबिया पर पूरे 42 साल राज किया। एक जमाने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक रहे गद्दाफी ने 1969 में लीबिया के बादशाह इदरीस का एक रक्तहीन सैनिक विद्रोह में तख्ता पलटा था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 27 साल। उस समय लीबिया में रहने वाले अशर शमसी बताते हैं।
I was asleep. My sister woke me up at about 7 o'clock and said, get up, there is a coup d'etat.
मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरी बहन ने मुझे जगा कर कहा, उठो उठो, सैनिक विद्रोह हो गया है। मैंने रेडियो ऑन किया, उसमें देशभक्ति के गीत बज रहे थे और जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। जब मैं सिटी सेंटर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग सड़कों पर जमा थे। वो लोग लीबिया और क्रांति के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सत्ता किसके हाथ में आई है और मैं भी जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है।
At least in part. They've deposed King Idris and proclaimed a new regime under the title of the Libyan Arab Republic. The man was not known at all. He was 27 years of age and nobody knew him except...
गद्दाफी को शायद लीबिया का एक भी शख्स नहीं जानता था। 27 साल की उनकी उम्र थी। शायद उनके नजदीकी सलाहकारों को ही उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता थी। सत्ता संभालने के कई दिनों बाद उन्होंने पहली बार देश को संबोधित किया।
मैंने बदलाव और शुद्धिकरण की आपकी मांग का जवाब दिया है। बादशाह ने देश के बाहर रहने की बात मान ली है। बहुत से लोगों ने रुकी हुई और सामंती राजनीतिक व्यवस्था के बाद बहने वाली ताजी हवा का जोर शोर से स्वागत किया है।
गद्दाफी ने शुरू से ही जोर दिया कि वो व्यक्ति पूजा के घोर विरोधी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो निरंकुश तानाशाह बनते गए और अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी सनक खतरनाक हद तक बढ़ती चली गई। गद्दाफी की जीवनी लिखने वाले डेविड ब्लंडी और एंड्रयू लिसेट अपनी किताब गद्दाफी एंड द लीबियन रिवॉल्यूशन में लिखते हैं,
जब गद्दाफी ने पहली बार सत्ता संभाली तो वो त्रिपली में एक पुरानी धुरानी फॉक्स वैगन में घूमा करते थे। वो और उनकी पत्नी स्थानीय सुपरमार्केट में खुद खरीदारी करते थे। जब वो अजीजिया बैरक से निकलते थे तो हथियार बंद कारों का काफिला दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ता था। एक में वे खुद होते और दूसरे को झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब वो हवाई जहाज से कहीं जाते तो दो जहाज उड़ान भरा करते थे। जिस जहाज में उन्हें जाना होता था वो 2 घंटे तक उड़ान भरने के बाद नीचे उतारा जाता, तब जाकर वो उसमें बैठते थे ताकि अगर उस विमान में बम रखा हो तो वो उनके बैठने से पहले फट जाए। एक बार उन्होंने ट्यूनीशिया संदेश भिजवाया कि वो वहां कार से पहुंचेंगे। वहां का सारा मंत्रिमंडल उनका स्वागत करने सीमा पर पहुंच गया। बाद में पता चला कि वो सुरक्षा कारणों से ट्यूनिस विमान से पहुंच गए। विमान का कोड नेम ईगल था। जब उतरने से पहले कंट्रोल रूम ने पूछा कि विमान में कौन है तो पायलट ने गद्दाफी का नाम न लेते हुए कहा, हमारे विमान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
गद्दाफी दुनिया भर में उस समय बहुत बदनाम हो गए जब 21 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से डिट्रॉयट जाने वाली पैन एम फ्लाइट में स्कॉटलैंड में लॉकरबी के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ जिसमें 243 लोग मारे गए। जांच में पाया गया कि इसमें कथित रूप से लीबिया का हाथ था। अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन गद्दाफी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता तक कह डाला।
We know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. Muslim.
हमें पता है कि मध्य पूर्व के इस पागल कुत्ते का लक्ष्य विश्व में क्रांति करना है, मुस्लिम कट्टरपंथी क्रांति, जिसका निशाना बहुत से अरब देश भी हैं। हमें ये पता नहीं कि हम इसमें कहाँ ठहरते हैं।
बाहर ही नहीं, अपने देश में भी गद्दाफी की ज्यादतियों की खबरें बाहर आने लगी। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को फांसी पर लटकाना आम बात हो गई। उन दिनों ट्रिपोली में रहने वाले बाशेश शेखावी ने बीबीसी को एक ऐसी घटना बताई थी जिसके कि वो खुद प्रत्यक्षदर्शी थे।
One day we came into the university and we found about 4 people hanging in the entrance of the university, hanging.
एक दिन जब हम विश्वविद्यालय पहुंचे तो उसके मुख्य द्वार पर 4 लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत धक्का लगा। हुआ ये था कि गेट पर गद्दाफी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। रात को कुछ छात्रों ने आकर उस पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। गद्दाफी के प्रशासन ने तय किया कि इन लड़कों को सबक सिखाया जाए और सबको विश्वविद्यालय के गेट पर ही फांसी पर चढ़ा दिया गया।
1996 में गद्दाफी के सैनिकों ने ट्रिपोली की अबू सलीम जेल में कैदियों को एक अहाते में जमा कर उन पर गोली चला दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस नरसंहार में 1,270 कैदी मारे गए। उनके रिश्तेदारों को कभी नहीं बताया गया कि उनके लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। लिंडसी हिल्सम ने अपनी किताब सैंडस्टॉर्म लीबिया इन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन में लिखा।
फुआद असद बेन उमरान ने मुझे बताया कि वो हर दो महीने बाद अपने साले के दो बच्चों के साथ ट्रिपोली जाया करता था ताकि वो अबू सलीम जेल में उनसे मिल सके। वो अपने साथ उनके लिए कपड़े और रोजमर्रा की चीजें लेकर जाते थे जिसे सुरक्षा कर्मी अपने पास रख लेते थे, लेकिन उन्हें कभी अपने साले से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि हम 14 सालों तक लगातार वहां जाते रहे, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक नरसंहार की विभीषिका को तो समझा जा सकता है, लेकिन 14 सालों की झूठी उम्मीद पर जब परिवार ये आस लगाए बैठे हो कि उनके लोग एक दिन वापस घर आएंगे, जबकि वास्तव में उनका निर्जीव शरीर पास के गड्ढे में पड़ा हो, शायद इससे बड़ी क्रूरता की मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो।
वैसे तो गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर को अपना हीरो मानते थे, लेकिन उनके बाद मिस्र के राष्ट्रपति बने अनवर सादात और फलस्तीनी नेता यासिर अराफात से उन्हें खास छिड़ थी। लिंडसी हिल्सम अपनी किताब में लिखती हैं।
मिस्र के पत्रकार मोहम्मद हाइकाल ने लिखा था कि सऊदी अरब के शाह फैजल और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब गद्दाफी ने सुझाव दिया कि जॉर्डन के शाह हुसैन को मार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 1971 में अपने यहाँ से फलस्तीनी लड़ाकों को निकाल दिया था। यासिर अराफात के लिए उनके मन में कोई खास इज्जत नहीं थी। गद्दाफी अराफात से इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि उन्होंने विदेश में रह रहे गद्दाफी के विरोधियों को मारवाने में उन्हें अपने लोग मुहैया नहीं करवाए थे। 1992 में जब अराफात और अल फतेह के साथी बैरूत में घिर गए तो गद्दाफी ने उन्हें खुला टेलीग्राम भेजकर कहा था, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप आत्महत्या कर ले। तब अराफात ने उसका जवाब देते हुए लिखा था, मैं इसके लिए तैयार हूँ बशर्ते आप भी मेरे साथ यही कदम उठाएं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
कुछ खेल समाचार अभी बाकी हैं।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ, जहां पर इंग्लैंड के मैदान पर आज मुकाबला होगा इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, तो वहीं दूसरा मुकाबला होगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। एक मुकाबला कार्डिफ में खेला जाएगा तो दूसरा मुकाबला टोरंटो में खेला जाएगा। और आंकड़ों पर गौर करें तो इंग्लैंड ने अपना पहला मुकाबला जीता था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 104 रनों से, तो वहीं एक मुकाबला हारा था पाकिस्तान के हाथों 14 रनों से, और बांग्लादेश अपना एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेटों से हार गई थी, तो एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 रनों से जीत गई थी। ऐसे में दोनों बराबर ही लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड बांग्लादेश से ऊपर है। तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का बुखार है तो फ्रांस में फ्रेंच ओपन का बुखार अब चरम पर है, क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला है। आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे विमेन सिंगल्स में मुकाबला होगा न्यूजीलैंड की खिलाड़ी एशली बार्टी का चेक की खिलाड़ी मार्केटा के खिलाफ। यह मुकाबला फाइनल का मुकाबला होगा और पता चल जाएगा कि किसके हाथ लगेगा फ्रेंच ओपन का खिताब।
और कुछ ही देर में बजेंगे भारत में सुबह के 7। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वो अगले साल से पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने की इजाज़त देगी। हर साल 12 निजी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जा पाएंगे। अमेरिका ने मैक्सिको के सामानों पर सोमवार से आयात शुल्क लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मसले पर वॉशिंगटन में बातचीत भी जारी है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहे तुर्की पर दबाव बढ़ा दिया है। विभाग ने तुर्की को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तो अमेरिका फाइटर जेट की डील रोक देगा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद सूडान का राजनीतिक संकट सुलझाने की कोशिश करें। सूडान में सैन्य शासकों और प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बात करने के बाद एबी ने सत्ता जल्द से जल्द नागरिक प्रशासन को सौंपे जाने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे आज होगा। बीबीसी इंडिया बोल रहेगा, आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।